नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपरा को सहेजने वाला राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कामगारों के लिए नए ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक छठ महापर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
डेट पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी, डेट पे कमीशन। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, आपसे पुलक घोष फ्रॉम एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ही विल बी द मेंबर्स।
उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
पी और एस न्यूट्रिएंट्स है जो कि इस रबी में काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1-10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने आगे कहा कि उर्वरकों और उनके आदानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपरा को सहेजने वाला राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि यह उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है।
यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवन लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है, साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रत्नावली महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अनुपम प्रयास है।
यह महोत्सव एक मंच है, एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है।
उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि युवा शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति व विरासत से भी जुड़े रहें। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का भी प्रयास है कि शिक्षा और संस्कृति के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को केवल कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रत्नावली का मंच हार जीत का नहीं बल्कि सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मंच है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा द्वारा पद्मश्री से अलंकृत संतराम देशवाल तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले श्री अनूप लाठर को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने हरियाणवी बोली में प्रकाशित रत्नावली टाइम्स पत्रिका का भी विमोचन किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार कामगारों की भलाई के लिए कृत संकल्प है। कुरुक्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए नए ईएसआई अस्पताल खोलेगी।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आने वाले समय के अंदर हिसार, रोहतक और अंबाला में 100-100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। इसी विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित परियोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत गीता स्थली ज्योतिसर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए विश्व का सबसे दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ स्थित अनुभव केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरु वंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशव अवतार सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्योतिसर अनुभव केंद्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को कुरुक्षेत्र के इतिहास के जीवंत दर्शन होंगे। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ महापर्व का समापन आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया। फरीदाबाद और पानीपत से हमारे संवाददाता ने बताया कि चार दिनों तक चले इस पावन पर्व के अंतिम दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। परिवारजन भी उनके साथ पूजा में शामिल हुए। पानीपत जिले में 9 मुख्य घाटों पर 3,00,000 से ज्यादा व्रतधारी महिलाओं ने सुबह उगते सूर्य की पूजा की। पंजाब के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने मौत के 12 दिन बाद अकील अख्तर का वो मोबाइल बरामद कर लिया है जिससे अकील ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। एसआईटी प्रमुख एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि अकील अख्तर का लैपटॉप भी बरामद हुआ है। चल रही जाँच को लेकर उन्होंने बताया,
जो उनके घर की सुरक्षा में तैनात थे 9 पुलिस कर्मी, उनसे हमने पूछताछ करी थी। आज 11 जो पुलिस कर्मी हैं पंजाब पुलिस के, वो भी उनको भी आज बुला रखा है हमने और उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। और इसके अलावा घर में काम करने वाले जो बाकी कर्मचारी हैं, जो हाउस हेल्प हैं, माली हैं, तो उनको भी हम कल शामिल जांच करेंगे। उनसे भी जो चीजें हैं मृतक के बारे में और जो आरोप लगाए गए थे वीडियो में, उन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है।
पुलिस जल्दी ही मोबाइल और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। फरीदाबाद में 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भिवानी जिला के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपरा को सहेजने वाला राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कामगारों के लिए नए ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक छठ महापर्व आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त हुआ। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।